चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते सारी राह चलते चलते।
आवाज की दुनिया के दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केड़ू हाल आहे। मैं संगीता पमनानी आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक बार और एक अनोखी कहानी लेकर, जिसका नाम है 57 साल का पुराना आदमी। आज बहुत वक्त के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और उम्मीद है कि आपको मेरा इंतजार होगा। तो आज चलिए सुनते हैं एक और कहानी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। कमल भौचक्का सा वकील श्यामनाथ का मुंह देखता रहा। मॉडर्न प्लास्टिक लिमिटेड के 5,000 शेयर और वो भी उसके नाम? असंभव। वकील साहब, वो बौखलाकर बोला, फिर से देख लीजिए, कहीं जरूर कोई गलती हो गई है। मॉडर्न प्लास्टिक के शेयर भला मुझे क्यों मिलने लगे? नहीं मास्टर कमल, वकील श्यामनाथ ने अपनी व्यवसाय सुलभ गंभीरता से कहा, कोई गलती नहीं हुई है। यह सत्य है कि स्वर्गीय राय ज्योति प्रसाद ने अपनी वसीयत में आपके नाम मॉडर्न प्लास्टिक के 5,000 10-10 रुपए वाले साधारण शेयर छोड़े हैं। वसीयत में लिखा है कि किसी समय आपसे उनकी कोई अमूल्य सहायता की थी, ये शेयर आपको उसी की एवज में मिल रहे हैं। कमल का चेहरा खुशी से दमक उठा। मॉडर्न प्लास्टिक के 10 रुपए वाले शेयर की मौजूदा कीमत 14.09 रुपए थी। उसके मस्तिष्क में अपने आगामी जीवन की रूपरेखा उभरने लगी। वसीयत के सिलसिले में कमल श्यामनाथ से कई बार मिला। श्यामनाथ का पेशा ऐसी बातों में दखल देने की आज्ञा तो नहीं देता था, लेकिन फिर भी पहले ही दिन से वो यह जानने के लिए उत्सुक था कि आखिर कमल ने राय ज्योति प्रसाद की ऐसी कौन सी सेवा की थी जिसके बदले में वह उसे अपनी फर्म के इतने सारे शेयरों का स्वामी बना गए। आखिर एक दिन उन्होंने अपने व्यवसायिक रखरखाव को त्याग कर कमल से इस सिलसिले में बात करी डाली। मिस्टर कमल, श्यामनाथ ने अपने स्वर में यथासंभव पूछा, आप राय ज्योति प्रसाद को कब से जानते हैं? वकील साहब, कमल ने कहा, मैं जीवन में केवल एक बार ही उनसे मिला था और वो भी केवल 1 घंटे के लिए। मेरा भी यही विचार था, शायद पिछले साल नवंबर या दिसंबर में। नहीं नहीं, पिछले साल जून की 25 तारीख को मैं उनसे पहली और आखिरी बार मिला था। वैसे मिस्टर कमल, आपको ये बात क्या अलीफ लैला की कहानियों जैसी नहीं लगती कि राय साहब आपसे केवल 1 घंटे के लिए मिले और आपको अपनी फर्म के 5,000 शेयरों का मालिक बना गए? शायद आप नहीं जानते कि उनके कई संबंधियों को भी इतना नहीं मिला है जितना वो आपको एक नितांत अपरिचित व्यक्ति को दे गए हैं। जी हाँ, मैं स्वयं हैरान हूँ उस 1 घंटे की मुलाकात में। देखिए, मैं आपको आराम से ही बताता हूँ, आप बोर तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, श्यामनाथ ने जल्दी से कहा, शौक से कहिए, मैं तो स्वयं आपसे पूछना चाह रहा था। कमल कुछ क्षण विचारमग्न सा बैठा रहा, फिर वह बोला, उन दिनों मैं बाबुलगंज में रहता था और मेरा यह रोज का नियम था कि मैं रात का खाना खाकर मेहता रोड की ओर टहलने निकल जाया करता था और मेहता रोड के नुक्कड़ पर स्थित पनवाड़ी की दुकान से पान खाकर लौटा करता था। लौटती बार मेरी नजर राय साहब पर पड़ी थी। वे फुटपाथ पर रेलिंग का सहारा लिए खड़े थे और बड़ी खोई खोई नजरों से मेहता रोड से गुजरती हुई सारी भीड़भाड़ को देख रहे थे। वकील साहब, आप जानते ही हैं कि इस शहर में पर्यटकों की भरमार रहती है, ये लोग आमतौर पर रास्ता भूल जाने पर घबराए से सड़कों पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैंने राय साहब को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं उन्हें कोई भटका हुआ टूरिस्ट समझकर सहायता करने के विचार से उनकी ओर बढ़ा। समीप जाकर मैंने देखा उनके चेहरे पर घबराहट के भाव थे और भय के भाव अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहे थे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना, मैंने उनसे पूछा और फिर उनके बहुमूल्य वस्त्रों से प्रभावित होकर कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए टैक्सी मंगवा दूं। उन्होंने मेरी ओर घूमकर देखा, उनकी आंखों में एक विचित्र सा खालीपन झलक रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे परिस्थिति को समझने की चेष्टा कर रहे हों। उन्होंने बड़ी देर में अनिश्चितता पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, नहीं नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। मुझे उनके कथन की सत्यता पर संदेह था, इसलिए मैंने एक बार फिर चेष्टा की, क्या आपको किसी प्रकार का शौक लगा है? उनकी आंखें सामने से गुजरती हुई भीड़ पर टिकी हुई थी। उन्होंने धीरे से नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया, लेकिन उनके उत्तर में पहले वाली अनिश्चितता अब भी विद्यमान थी। यहाँ से थोड़ी ही दूर एक अस्पताल है, अगर हार्ट अटैक वगैरह नहीं, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अभी एक दो मिनट में ठीक हो जाऊंगा। उनके व्यवहार से ऐसा मालूम नहीं होता था कि उन्हें मेरी मौजूदगी खल रही थी, इसलिए मैंने कुछ देर और वहां खड़ा रहने की कोशिश की। कुछ देर वो बड़ी बेचैन दृष्टि से आसपास की वस्तुओं का अवलोकन करते रहे। एक बार उन्होंने झुककर अपने वस्त्रों को देखा तो वे सकते में आ गए। वे कुछ देर तक हैरानी से अपने शार्क स्किन के सूट को घूरते रहे। कई बार उन्होंने अपनी रेशमी टाई को उंगलियों से टटोला। वो रेलिंग के सहारे टिकी हुई अपनी बांह को उठाकर अपनी आंखों के सामने ले आए और आश्चर्यचकित होकर अपने कोट की आस्तीन को देखते रहे। आस्तीन से फिसलती हुई उनकी दृष्टि अपने झुर्रियों भरे हाथ पर पड़ी तो उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। यह मेरा हाथ, वो झुर्रियों को टटलते हुए बौखलाकर बोले। उनके चेहरे पर भय के चिन्ह और गहन हो गए। वो जोर जोर से अपना हाथ झटकने लगे। मुझे लगा कि जैसे उन्हें फिर दौरा पड़ने लगा है। अगर आप अस्पताल, मैंने कहा। उन्होंने एक बार फिर सिर हिलाकर विरोध किया। न तो मुझे वहां से चले जाने की इच्छा हो रही थी और न ही मेरी समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं इतना जरूर महसूस कर रहा था कि राय साहब को आराम की जरूरत है। मैंने उन्हें एक कप कॉफी पीने की सलाह दी। वो बिना उत्तर दिए चुपचाप मेरे साथ चल दिए। मैं उन्हें स्टैंडर्ड में ले गया और वहां उन्हें कुर्सी पर सहारा देकर बिठा दिया। बेरी को ऑर्डर देने के बाद जब मैं उनकी ओर घूमा तो वे दहले हुए से हॉल के दूसरे सिरे की ओर देख रहे थे। मैंने उनकी दृष्टि का अनुसरण किया। वे हॉल की दीवार में लगे हुए बड़े से दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। वो बड़े गौर से स्वयं को दर्पण में देखते रहे। फिर उन्होंने अपनी कांपती हुई उंगलियां अपनी चांदी जैसे सफेद बालों में फिराई और फिर एक गहरी सांस लेकर अपना शरीर कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया। इतने में बेरा कॉफी ले आया। उन्होंने कॉफी का एक घूंट पिया और थोड़ी देर तक उसके स्वाद का अनुभव करते रहे। उन्होंने एक बार फिर उस दिशा में देखा जिधर शीशा लगा हुआ था और मनी मन कुछ फैसला करके उठ खड़े हुए। मैं अभी एक मिनट में आया, उन्होंने कहा। वे हॉल में लगी मेजों के बीच से गुजरते हुए दूसरे सिरे पर पहुंच गए। पूरे दो मिनट वो शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं को देखते रहे और फिर सिर झटकाकर अपनी सीट पर वापस आकर बैठ गए। कुछ समझ में नहीं आता, वो निराशपूर्ण स्वर में बड़बड़ाए। कुछ समझ में नहीं आता, वो चुपचाप कॉफी पीने लगे। अभी वो रह रहकर बड़ी उद्विग्नता से शीशे की ओर देख रहे थे। कॉफी पी चुकने के बाद उन्होंने मुझे संबोधित करके कहा, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? धन्यवाद किस बात का, मैंने जल्दी से कहा। मुझे तो खुशी है कि आपके मैं किसी काम आ सका। मन ही मन मैं हैरान हो रहा था कि ऐसे धन्यवाद के योग्य मैंने किया ही क्या था। उनका विचित्र व्यवहार अब मेरे दिमाग में खटक रहा था, इसलिए मैंने एक बार फिर बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करी। वैसे यदि आप बुरा न माने तो क्या आप किसी अटैक के कारण? नहीं नहीं, अटैक नहीं, उन्होंने मेरी बात समझते हुए कहा, दुर्घटना कहिए, हालांकि मुझे तो अब भी सब कुछ स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। वो कोई सीधी बात तो कह नहीं रहे थे, केवल पहेलियां बुझा रहे थे। मैंने अपने स्वर को भरसक संतुलित करते हुए पूछा, लेकिन हुआ क्या था? मेरी अपनी ही गलती थी, वो खोए से स्वर में बोले। मैं जरा जल्दी में था, सड़क पार करने के लिए एक ट्राम के पीछे से गुजर रहा था। उसी समय विपरीत दिशा से एक ट्राम मेरे सिर पर आ गई। मैं बौखला गया और उसी बौखलाहट में मैं शायद ट्राम से टकरा गया था। ओह, ये दुर्घटना कहाँ घटी थी? यहीं इसी सड़क पर, यहाँ से 20-25 कदम पर। लेकिन आपको कोई चोट तो लगी मालूम नहीं होती? हाँ, उन्होंने अनिश्चित स्वर में कहा, चोट तो शायद नहीं लगी है। वास्तव में उनके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं दिखाई दे रही थी, न ही उनके कपड़ों पर रगड़ का कोई चिन्ह और शिकन थी। इसके अतिरिक्त एक बात और थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी का पहला भाग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा इसके दूसरे भाग का, कहानी आपको बहुत ही दिलचस्प लगेगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, मैं फिर आऊँगी आपके सामने जल्दी ही।
चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते।